हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तेज सिंह रानावत और मोहना को मारने के बाद युग और कृषा होटल के लिए निकल चुके थे। युग अब तक कृषा से नाराज था, इसीलिए वो फ्रंट सीट पर मलिक के साथ बैठा था, तो वहीं कृषा पीछे उस लड़की के पास बैठी थी। कृषा उसके चेहरे की तरफ एकटक देख रही थी। वो उम्र में लगभग 25 साल के करीब थी। हल्का गेरवा रंग, काली गहरी आंखें और कमर से भी लंबे घुंघराले बाल थे उसके। उसने अपने नाक में एक नोजरिन पहन रखी थी और आंखों में गहरा काजल डालकर काले रंग की बिंदी लगा रखी थी। कृषा ने उसके पेट की तरफ देखा और उससे पूछा, कितने महीने हो गए? कृषा का सवाल सुनकर उस लड़की ने हिचकिचाकर उसकी तरफ देखा, तो वहीं युग ने गुस्से में मुठ्ठियाँ बांध ली। मलिक का ध्यान भी ना चाहते हुए भी शीशे से उनकी तरफ चला गया। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, तो कृषा ने फिर से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा?
मीरा,
मीरा शेखावत, लड़की ने धीरे से जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, हमें 7 महीने हो गए हैं, आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? आप हमें उनकी तरह मारेंगी तो नहीं ना? डर के मारे मीरा अब तक चुपचाप बैठी थी, लेकिन कृषा ने उससे काफी नरमी से बात की थी, इसलिए उसने एक दो सवाल पूछ लिए। चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, कृषा ने जवाब दिया। युग अब तक अपने गुस्से को काबू किए हुए था। जैसे ही कृषा ने अपनी बात खत्म की, युग ने तेज आवाज में कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारी पर्सनल गार्ड घूम रही है, तो तुम्हें कोई कैसे कुछ कर सकता है? अब चुपचाप बैठी रहो, वरना मुझे गुस्सा आया तो यहीं गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा तुम दोनों को। मीरा डरकर चुप हो गई, तो वहीं कृषा ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अभी भी मीरा के पेट पर ही टिकी हुई थी और ना चाहते हुए भी कृषा अतीत की यादों में खो गई। कृषा आईने के सामने खड़ी थी और अपना पेट नाप रही थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसका वेट थोड़ा बढ़ गया था। कमर का नाप लेने के बाद उसने मेजरमेंट साइड में रखा और मुंह बनाते हुए खुद को देखने लगी। कृषा का इस तरह मुंह बना हुआ देखकर सारा जोर से हंस पड़ी। वो उसके पास आकर बोली, तुम्हारे इस तरह मुंह बनाने से ये कम नहीं होने वाला, बल्कि ये तो और बढ़ेगा। मैं ये सोच रही थी कि तुम अपना वेट कैसे कम करोगी। सोचो, क्या हो जो तुम हमेशा इतनी ही चबी रहो? सारा की बात सुनकर कृषा ने उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन तुम ऐसी बातें करके मुझे डराओ तो मत। अम्मू ने कहा था कि मेरा वेट 3 महीने बाद थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, वैसे बात तो सही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया तुम ऐसी हालत में बाहर घूमने क्यों जाना चाहती हो। ना तुम अच्छी तरह घूम फिर सकती हो और ना ही ड्रेसेस की शॉपिंग कर सकती हो। इससे अच्छा है ना कि घर बैठकर आराम करो, सारा ने हैरानी से पूछा। ये वही वक्त था जब कृषा घूमने के लिए बाहर जा रही थी। कृषा वहां से चलकर बेड पर बैठ गई, क्योंकि वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। उसने सारा की तरफ देखकर कहा, दादू ने पूछा था कि मुझे बर्थडे पर क्या चाहिए, मुझे घूमने जाना है, यहाँ रहते हुए दमसा घुटने लगाए, कुछ दिन बाहर रहूंगी तो मेरे बेबी को और मुझे दोनों को अच्छा लगेगा ना। बोलते हुए कृषा ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, है ना बेबी। पुरानी बातें याद आते ही अचानक कृषा का हाथ उसके पेट पर चला गया। मीरा ने ये चीज नोटिस कर ली थी। उसने कृषा की तरफ देखकर धीरे से पूछा, आप भी पेट से हैं क्या? लेकिन आपको देखकर तो नहीं लग रहा। कृषा जानती थी उसके इस सवाल पर युग गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए उसने मीरा को चुप रहने का इशारा किया। मीरा सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तभी युग उनकी तरफ मुड़कर चिल्लाकर बोला, मैंने तुम दोनों से कहा था कि चुप रहना, फिर भी तुम दोनों को समझ नहीं आता क्या? मलिक, ऐसा करो, गाड़ी रोको, ये दोनों पीछे किसी गाड़ी में बैठ जाएगी। कृषा ने युग को समझाते हुए कहा, देखो, तुम इस तरह हम पर गुस्सा नहीं कर सकते हो। दो लड़कियां जब साथ होती हैं तो बात करना ऑब्वियस है। मैंने सिर्फ इसका नाम ही तो पूछा है, उसमें तुम इतना भड़क क्यों रहे हो?
हाँ, ये सही कह रही है,
मीरा ने कृषा की बात पर हामी भरते हुए कहा। हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया है, आप इन पर इतना चिल्ला रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि ये माँ नहीं बनने वाली है। उसके बाद मीरा ने कृषा की तरफ देखकर पूछा, आपके घर वालों ने आपकी शादी उनके साथ जबरदस्ती करवाई थी क्या? मीरा की बातों से कृषा समझ गई थी कि बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी ज्यादा बोलने की आदत थी। कृषा ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं गुस्से में युग ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मीरा की तरफ पॉइंट करके कहा, अब अगर अपने मुंह से एक शब्द भी निकला तो आगे बोलने लायक नहीं रहोगी। उसके बाद युग ने वापस अपना चेहरा सामने की तरफ कर लिया था। युग के सामने देखते ही कृषा मीरा के पास खिसकी और बिल्कुल धीरे से कहा, हाँ, हम दोनों की शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं करवाई थी। तुमने देखा ना ये कैसा है, इसने खुद ही मुझे किडनैप करके मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली थी। कृषा काफी धीरे बातें कर रही थी, फिर भी उसकी बातें युग और मलिक के कानों में पड़ रही थी। उसकी बातें सुनकर मलिक के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। युग ने उसे नोटिस किया तो वो उस पर चिल्लाकर बोला, ऐसा करता हूँ, मैं ही किसी और गाड़ी में चला जाता हूँ। तुम्हारा बहुत मन कर रहा होगा ना इन दोनों के साथ गॉसिप करने में कि हम दोनों की शादी कैसे हुई थी या हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। युग के चिल्लाते ही कृषा और मीरा ने अपने अपने होठों पर उंगली लगा ली थी। युग इस वक्त गुस्से में काफी इरिटेट हो रहा था, क्योंकि कृषा ने उसकी बात नहीं मानी थी। ऊपर से वो मीरा को भी अपने साथ ले आई थी। कुछ ही देर में वो चारों होटल पहुंच चुके थे। वहां आने के बाद युग ने मलिक से कहा, इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसे अपने साथ रूम में ले जाओ। जैसे ही युग ने मीरा को मलिक के साथ रुकने के लिए कहा तो वो झट से बोली, हमें इनके साथ नहीं जाना है, हम एक आदमी के साथ एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? ऐसा करते हैं, आप दोनों एक कमरे में रह लीजिए और मैं दीदी के साथ में रह लूंगी। उसने कृषा को दीदी कहकर बुलाया, हालांकि वो उम्र में उससे छोटी थी। अपनी बात कहकर मीरा ने कृषा का हाथ पकड़ लिया। युब ने मीरा का हाथ कृषा के हाथ से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे पसंद नहीं है कि कोई इसे मेरे अलावा टच करे। ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इसलिए अकेले भी नहीं छोड़ सकता। चुपचाप जो कहा है वो करो। युब को देखकर मीरा को घबराहट होने लगी। कृषा ने उसे सहलाते हुए कहा, घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम मलिक के साथ जा सकती हो, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। हम सुबह मिलते हैं, अभी रात काफी हो गई है। मीरा ने कृषा की बात पर हामी भरी और मलिक के साथ अंदर चली गई। मलिक ने उनके लिए दो कमरे बुक कराए, जिसमें एक में मलिक और मीरा जाने वाले थे तो दूसरे में युग और कृषा। रूम के अंदर आते ही कृषा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वो जानती थी कि उसे युग को कैसे मनाना है। युग आते ही बाथरूम में चला गया था तो वहीं कृषा खुद को आईने में देख रही थी। वो खुद की साड़ी सही करने लगी और अपने बालों को ठीक करने के बाद आईने में देखते हुए कहा, अच्छी तो लग रही हूँ, आई होप युग का गुस्सा शांत हो जाए। युग की एब्सेंस में कृषा ने जल्दी से इंटरकॉम से कॉल किया और उनके लिए वाइन ऑर्डर कर ली थी। अब वो बेसब्री से युग के बाहर आने का वेट कर रही थी। युग कृषा को लेकर होटल में आया था। उन्होंने तेज सिंह रानावत के बच्चे के सरोगेट मदर मीरा को भी अपने साथ ले लिया था और इस वक्त वो मलिक के साथ थी।
युग कृषा से नाराज था क्योंकि उसने मीरा को बचाने के लिए उस पर गन पॉइंट की थी। रूम में आते ही युग वॉशरूम में चला गया, जबकि कृषा बाहर उसे मनाने के लिए तैयारियां कर रही थी। बाथरूम में आते ही युग ने मलिक को कॉल पर कनेक्ट करके कहा, मैंने कृष के सामने कहा नहीं, क्योंकि वो उसे देखकर इमोशनल हो रही थी। उस लड़की की छानबीन करो और उस पर नजर रखना। हम उसे अपने साथ लंदन लेकर जा रहे हैं। उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। उससे पहले हम उसे यहाँ से लेकर नहीं निकलेंगे। वो तेज सिंह राणावत से जुड़ी हुई है तो कोई मासूम लड़की तो नहीं हो सकती। ऊपर से ऐसे सिचुएशन में भी वो इतना बोल रही थी तो मुझे डाउट हो रहा है। जी सर, मलिक ने जवाब दिया। उसने बात करते हुए बीरा की तरफ देखा, जो खाना आने का वेट कर रही थी और मासूमियत से पूरे रूम को देख रही थी। युग से बात करने के बाद मलिक मीरा के पास गया। उसके आते ही मीरा ने पूछा, आप भी उनकी तरह गुस्सा तो नहीं करोगे ना? हम यहाँ रह रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे पैसे लगे होंगे ना? क्या आपके पास इतने पैसे हैं? पैसे तो तुम्हें भी मिले होंगे इस बच्चे को पैदा करने के लिए। तुम मान कैसे गई इस काम के लिए? तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी गाँव से हो। गाँव में शादी से पहले बच्चे पैदा करना क्राइम जैसा होता है, मलिक ने हैरानी से पूछा। मीरा ने उसकी बात पर हामी भरी और मायूसी से कहा, बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें बाहर निकालने की इजाज़त ही कहाँ थी। हमारे पिताजी ने उनसे पैसे उधार लिए थे। बदले में वो हमें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने हमारा बाकी कर्ज भी चुकाया था। कितने पैसे थे ये तो हम नहीं जानते, पर काफ़ी सारे ही होंगे। तभी हमारे माँ बाबूजी ने हाँ कही थी। मीरा की कहानी सुनकर एक पल के लिए मलिक को उससे हमदर्दी हुई, लेकिन वो इतनी आसानी से किसी की कहानी पर यकीन नहीं कर सकता था। उसने मीरा से आगे पूछा, अपने गाँव का नाम और माँ बाबूजी का नाम भी बताओ। मीरा उसे सब कुछ बताने लगी। लंदन जाने से पहले मलिक को मीरा के बारे में सब कुछ पता लगाना था, इसलिए वो उससे काफ़ी सॉफ्टली बात कर रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातों के बारे में पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ युग बाथरूम से बाहर निकला। उसने देखा कृषा अपनी एक कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसने साड़ी भी अलग तरीके से ड्रेप कर रखी थी, जिसमें उसकी कमर का ज़्यादातर हिस्सा दिख रहा था। युग ने कृषा को देखकर आइज रोल की और सिर हिलाकर कहा, क्या लगता है कृष, तुम्हारे इन उल्टे सीधे तरीकों से मैं मान जाऊंगा? तुमने मुझ पर गन पॉइंट की थी, ऊपर से शूट भी किया था। युग का रिएक्शन देखकर कृषा मायूस हो गई। उसने जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक किया और युग के पास आकर कहा, तुमने भी मुझ पर गन पॉइंट की थी, मुझे शूट भी करने वाले थे। मैं तो तुमसे नाराज नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठे हो? मैं तुमसे पहले से ही नाराज था। अब साइड हट जाओ, मुझे कुछ देर के लिए सोना है और मुझसे दूर रहना तुम, युग ने काफी बेरुखी से कहा और बेड पर जाकर आराम से बैठ गया था। कृषा वहां पर खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। युग की आंखें कृषा की तरफ ही थी। वो जानना चाहता था कि अब कृषा क्या स्टेप लेगी। कृषा उससे कुछ कहती उससे पहले रूम की डोरबेल बजी। कृषा ने वाइन मंगवाई थी, वो आ गई थी। उसे लेने के बाद कृषा अंदर आई और युग को दिखाते हुए बोली, ठीक है, तुम रहो ऐसे ही मुंह फुलाकर, मैं तो इसे एंजॉय करने वाली हूँ। युग ने अभी भी कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा युग उसे ऐसा करने से रोकेगा। गुस्से में कृषा ने बॉटल को साइड में रख दिया और युग के पास आकर कहा, मुझे साड़ी में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम मेरे लिए दूसरे कपड़े मंगवा दो। मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ, जैसे ये वाइन खुद ऑर्डर करके मंगवाई थी वैसे ही कपड़े भी मंगवा लो, आ जाएंगे, युग ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। यहाँ कितनी गर्मी है ना, कपड़े मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं बिना कपड़ों के भी सोंगी तो चलेगा ना, कृषा ने मुस्कुराकर कहा। युग ने कृषा की तरफ देखकर इविल स्माइल की और जवाब में कहा, इट्स योर चॉइस कृष, तुम्हें जो करना है करो, बट मुझे क्यों बता रही हो? कृषा हर तरह से युग का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युग उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। ये बात कृषा को इरिटेट कर रही थी। कृषा चिरते हुए युग के पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, आई वॉन्ट यू युग। युग ने कृषा का सिर अपने कंधे से उतारा और कहा, बट आई डोंट वॉन्ट यू कृष। क्या पता फिर कल को मुझे ये सुनने को मिले कि मैं तो इसके करीब नहीं आना चाहती थी, लेकिन ये जबरदस्ती मेरे पास आया था। कुछ देर पहले ही कहा था ना तुमने उस लड़की से कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। अच्छा तो तुम मुझसे इस वजह से नाराज हो, लेकिन इसमें गलत क्या है? कृषा युग की आंखों में देखते हुए बोली, गलत यह है कि तुम हमारी प्राइवेट बातें किसी और के सामने बोल रही हो। मैं तुमसे नाराज था, फिर भी मैंने सबके सामने ऐसे रिएक्ट किया जैसे हमारे बीच सब कुछ ठीक हो, तो तुम्हें भी वही करना चाहिए था। अब ये उल्टी सीधी हरकतें करके मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि वाकई में मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। नाउ प्लीज लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, युग ने जवाब दिया। बोलते हुए वो अग्रेसिव हो गया तो उसकी आवाज तेज हो गई थी। अब तक युग उससे नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन युग के चिल्लाने पर कृषा की आंखें नम होने लगी। उसने हां में सिर हिलाया और उठकर वहां से बाथरूम में चली गई। कृषा के जाते ही युग ने सिर हिलाकर कहा, बस इसकी इनोसेंस ही इसकी प्रॉब्लम है। हद है यार, मैं अब इससे चिल्लाकर भी बात नहीं कर सकता। बात बात पर रोना शुरू कर देती है। किस बात की ट्रेनिंग ली है इस लड़की ने और क्या सिखाया है उस आदित्य सिंघानिया ने? अनजान इंसान के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं कैसे समझाऊं इसे? पता नहीं वो किस इंटेंशन से हमारे साथ है। कृषा को हर्ट करने के बाद युग को बुरा लग रहा था। युग कृषा को मनाने के लिए बाथरूम के पास जा रहा था, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। कृषा ने साड़ी चेंज करके बाथरूम पहन लिया था। उसने ब्लैंकेट और एक्स्ट्रा पिलो उठाया और युग के पास सोने के बजाय वहां लगे सोफे पर जाकर सो गई। युग ने भी इस बार कृषा को मनाने की कोशिश नहीं की। वो आंख बंद करके लेट गया। कुछ ही देर में उन दोनों को नींद आ चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य सिंघानिया और माइक इंडिया जाने के लिए निकल चुके थे।